जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि मॉडर्न स्लेवरी यानी आधुनिक गुलामी का 40 मिलियन से भी अधिक लोगों पर असर है, और पेंडेमिक के चलते तो ये स्थिति और भी बिगड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्न स्लेवरी को पूरी तरह से हटाने के लिए कानून भी हैं। इसी गंभीर समस्या पर दो भागों की एक रिपोर्ट है पत्रकारिता से जुड़ी और फॉरेन करस्पॉन्डेंट नीना भंडारी की। नीना भंडारी फॉरेन करस्पॉन्डेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और वो साइंस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड मेंबर हैं। यहाँ मुख्यधारा यानी मेन स्ट्रीम और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में जुड़ी रहकर सक्रिय हैं, और उनकी इस रिपोर्ट यानी मॉडर्न स्लेवरी इन एशिया पैसिफिक के लिए न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर्स मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन अवार्ड मिला है। इसके अलावा भारतीय एसाइलम सीकर्स पर उनकी एक और रिपोर्ट है द इनविजिबल पीपल। इस रिपोर्ट के लिए भी वो पब्लिक इंटरेस्ट अवार्ड कैटेगरी में फाइनलिस्ट रही। तो आज इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स पर नीना भंडारी जी से बात की और उनसे सबसे पहले पूछा कि मॉडर्न स्लेवरी के विषय पर काम उन्होंने कैसे शुरू किया था, तो वो बताती हैं।
ये स्टोरी इंटरप्रेस सर्विस IPS जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है उनके द्वारा कमीशन की गई थी। और मॉडर्न स्लेवरी के जो ट्रेंड्स हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। पुरुषों महिलाओं और बच्चों का विभिन्न कारणों से शोषण किया जाता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, डेट बॉन्डेज, फोर्स्ड मैरिज या ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए।
आपने एशिया पैसिफिक की बात की तो उसमें तो ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें यहाँ की भी बात है, तो जानना चाहूंगी कि उसके स्पष्ट उदाहरण कहाँ पर यानी आपको किस क्षेत्र में मिले, और कुछ परेशानियां भी आई होंगी इस काम के लिए आपको।
बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ये रिपोर्ट लिखना मैंने जब शुरू किया तो सबका पहला रिएक्शन यही होता था इट डजंट हैपन इन ऑस्ट्रेलिया
जी,
लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इन कंट्रीज में भी मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पाई जाती है, और जो सेक्टर्स मोस्ट एट रिस्क हैं इसके वो है लॉगिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मीट पैकिंग, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क एंड क्लीनिंग, हॉस्पिटैलिटी और सेक्स इंडस्ट्री। तो ये मेरी जो दो भाग श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य आधुनिक गुलामी की छिपी हुई कुरीतियों को उजागर करना था। तो जब मैं ये स्टोरी रिसर्च करने लगी थी तो लोग मतलब का इंस्टेंट रिएक्शन जैसे मैंने कहा यही था कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि मुख्य रूप से मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एक डेस्टिनेशन कंट्री है, यहाँ एशिया के देशों से जैसे थाईलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया और बाकी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज से ट्रैफिक करके लोग लाए जाते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में ये पाया गया है कि मॉडर्न स्लेवरी इज फ्यूल्ड बाय पॉवर्टी, माइग्रेशन, वीक गवर्नेंस और सांस्कृतिक प्रथाओं का दुरुपयोग।
अच्छा जी।
और ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्पररी वीसा होल्डर्स हैं, अनडॉक्यूमेंटेड पीपल हैं और जो माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं, वो सबसे ज्यादा जोखिम में हैं इससे शोषण में। और ज्यादातर ये पाया गया है कि ट्रैफिक पीपल अपने ट्रैफिकर को अच्छे से जानते हैं।
अच्छा।
और उन पर विश्वास करते हैं, और यही कारण है कि ट्रैफिकर उनके इस विश्वास का आसानी से फायदा उठा लेते हैं
जी।
और ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इट जनरेट्स $150 बिलियन अ ईयर। और ये COVID-19 के लॉकडाउन के दौरान जो लोग मॉडर्न स्लेवरी की स्थिति में हैं, उनकी दशा और भी खराब हो गई है
जी। यही मैं आपसे पूछने जा रही थी कि इस दौरान में तो और अधिक परेशानी वाली बात बन गई।
बिल्कुल, ऑलरेडी जो बॉन्डेड लेबर हैं या फोर्स लेबर हैं या जिस मतलब मॉडर्न स्लेवरी की स्थिति में है तो उनकी दशा और भी खराब हो गई, और इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ही टाइमली है। और ज्यादातर देशों में अब एंटी स्लेवरी लॉज और काउंटर ट्रैफिकिंग इनिशिएटिव्स हैं और कई सारी संस्थाएं सरकारों के साथ इस कुरीति को मिटाने के लिए काम कर रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक एंटी स्लेवरी नेटवर्क है, ब्लू ड्रैगन चिल्ड्रंस फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मॉडर्न स्लेवरी और ट्रैफिकिंग के शिकार हुए लोगों को छुड़ाने और रिहैबिलिटेट करने का काम कर रहे हैं। और ये इसलिए भी कर रहे हैं जिससे कि ये लोग जो एक बार मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो चुके हैं वो वापस इसके चुंगल में ना फंसे।
जी,
और अब जैसे सोशल मीडिया और SMS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अथॉरिटीज की मदद कर रहा है इस कुरीति को मिटाने के लिए।
जी, बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट रही आपकी, तो कितना समय लगा था आपको इसको करने में?
इसका टर्न अराउंड पीरियड सिर्फ 3 हफ्ते था और पहले 2 हफ्ते में मेरे को कोई भी लीड नहीं मिला और कोई भी केस स्टडी नहीं मिली थी, तो लग रहा था कि कोई जने से बात हो पाएगी या नहीं। लेकिन फिर आखिर के 1 हफ्ते में like I must have interviewed more than 2 dozen people and which is reflected in the story. और ये भी कहना चाहूंगी मैं एक अंत में कि इस पुरस्कार से ये मुद्दा हाईलाइट हुआ है और इससे अगर ये कुरीति मिट जाए समाज से तो आई थिंक वही सबसे बड़ा पुरस्कार होगा।
जी, इस तरह की कुरीति समाज के सामने आती है और उस पर काम किया जाता है तो जैसा आपने कहा इससे बड़ा पुरस्कार तो कोई और हो ही नहीं सकता है। आप बहुत बहुत प्रशंसा की पात्र हैं ही। इसके अलावा आपकी एक स्टोरी दूसरी है जो इनविजिबल पीपल के नाम से एसाइलम सीकर्स पर है, जिसके लिए भी आपको पब्लिक इंटरेस्ट कैटेगरी में आप फाइनलिस्ट रहीं, तो उसके बारे में भी कुछ हमें बताइए।
तो ये जो दूसरी स्टोरी थी असाइलम सीकर्स पर, ये इंडियन असाइलम सीकर्स पर थी। जब मैं ये स्टोरी करने लगी तो सबका यही कहना था कि इंडियंस यहाँ पे पढ़ने आते हैं या सैर करने आते हैं या फिर स्किल माइग्रेंट्स के जैसे आते हैं एंड असाइलम सीकर्स इंडिया से नहीं आते। तो ये स्टोरी करने में मुझे करीब 6 महीने लगे क्योंकि मुझे मैंने इसके अंदर पीएनजी पापुआ न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया के ऑफशोर इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स हैं वहां पे से कुछ इंडियन असाइलम सीकर्स का इंटरव्यू किया और नारू से भी और उन्होंने अपनी स्टोरीज मुझसे बहुत डरते डरते शेयर करी क्योंकि ज्यादातर इन लोगों ने कभी भी अपने परिवार वालों को ये नहीं बताया था कि वो लोग डिटेंशन सेंटर में है क्योंकि डिटेंशन यानी कि एक तरह का जेल और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में उस शब्द का अच्छा मतलब नहीं है। तो उनको ये डर था कि पेरेंट्स पे क्या या फैमिली और फ्रेंड्स में क्या बीतेगी। तो इस स्टोरी का मेन मुद्दा यही था कि उन्होंने जब ये दे वर वेरी ट्रॉमेटाइज्ड एंड like very depressed लेकिन उन्होंने इसलिए शेयर करी कि और कोई जना पब्लिक ये पीपल स्मगलर्स के चुंगल में न फंसे और अगर कभी दूसरे कंट्री में या दूसरे देश में जाना है तो लीगल माइग्रेशन पाथवे से ही जाना चाहिए हमेशा।
जी बिल्कुल, चंगुल में लोग फंस जाते हैं और फिर उससे निकलना कितना मुश्किल हो जाता है और
क्योंकि कई लोग 6 और 7 साल से अभी तक भी डिटेंशन सेंटर में they haven't seen freedom।
दुखद बात भी है, ये हो रहा है और इसी को आपने दोनों रिपोर्ट्स में उजागर भी किया और उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला, सम्मान भी मिला। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और ढेरों शुभकामनाओं के साथ में आपके समय का धन्यवाद करना चाहूँगी।
बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।